हमारी आदरणीय संतोष दीदी जी, आप रशिया पीटर्सबर्ग जहां आप अपनी सेवाएं दे रही है करीब 50 वर्षों से, और बहुत ही रमणीक है, आप देख रहे हैं ना, आदरणीय संतोष दीदी जी बहुत रमणीक है और रमणीक रीति आपको क्लास कराने वाली है, क्योंकि आपको नींद आने वाली नहीं। दीदी ने सोचा मैं इतनी अच्छी क्लास कराऊं और सब सोते रहेंगे, इसलिए सब एक्सरसाइज से क्या हो गया सबकी नींद उड़ गई ना, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है, थोड़ा थोड़ा आ जाती है, अमृत वेले से सब उठते हैं। तो दीदी जी का क्लास का विषय ही है संतुष्ट मन और प्रगतिशील जीवन। मैं दीदी के बारे में यही कहूंगी कि दीदी सब कुछ प्रैक्टिकल बातें बताती है, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि 1985 में आदरणीय चक्रधारी दीदी जी के साथ हमारी आदरणीय संतोष दीदी जी ने हमारी टीचर ट्रेनिंग कराई थी, इसलिए हमारी टीचर भी है और उसके बाद ही आप रशिया गए, बाबा ने आपको देखो बेहद की सेवा में भेजा, और वहां आपकी बहुत अच्छी सेवाएं चल रही है, और हमको बहुत चांस मिला, परम सौभाग्य कि हमारी अभी सेवा का टर्न था और हमारी आदरणीय संतोष दीदी जी भी यही हैं। कल आपने कोअम फिल्म देखा होगा, है ना, आज उसको दिखाएंगे 8:45 से 9:30 तक डायमंड हॉल में है, आप जरूर देखिएगा, उसका आपने बहुत सुंदर निर्माण किया। दूसरी बात, हमारी आदरणीय संतोष दीदी जी वहां के लोगों को, रशियन लोगों को, जैसे कि भारतीय कल्चर से, यहाँ की संस्कृति से बहुत अच्छी पहचान करा रही। वहां के जो स्टूडेंट हैं, इतना अच्छा हिंदी में गीत गाते हैं, आपने देखा होगा प्रोग्राम के दिन भी कितना सुंदर गाया ना, कौन सा गीत था, कभी सोचा नहीं भगवान मिलेगा, कितना प्यार से भावना प्रद। तो आप यहाँ के कल्चर को उन लोगों में इतने सहज रीति भर रही हैं, क्योंकि वो है तो सतयुग के ही, भारत के ही, लेकिन दीदी उनको बहुत अच्छे तरीके से टैकल करती है, बहुत प्यार से। तो अभी आप सबको बहुत सुंदर क्लास कराने जा रही हैं, कैसे हमारा मन संतुष्ट रहे और हमारे जीवन में प्रगति निरंतर होती रहे। आदरणीय संतोष दीदी जी,
ओम शांति। सारे ब्राह्मण परिवार ने या अधिकतर भाई बहनों ने जरूर ये महत्वपूर्ण समाचार सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा कि 2 दिन पहले आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी ने राष्ट्रीय महत्व के लेवल का ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा जो विज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, प्रोजेक्ट लॉन्चिंग की, जो सरकार की ये लॉन्चिंग है, कर्म योग द्वारा सशक्त भारत, देखा आपने, नहीं देखा तो देख लेना, वो भी समाचार तैयार है, अपने चैनल्स पर है। और इस जो मिशन का लक्ष्य है कि भारत फिर से आध्यात्मिक नैतिक मूल्यों के आधार पर श्रेष्ठ कर्म करते हुए फिर से आगे बढ़े और प्रगति करे, तो आपको लगता है कि ये एक स्वर्णिम संस्कार की तरफ एक और बहुत बड़ा घंटा बजा है, क्योंकि अभी तक क्या मान्यता थी, अध्यात्म अलग, सरकार अलग, जीवन अलग, कमाना अलग, साधना अलग, नैतिक मूल्य अलग और व्यवहारिक व्यवसायिक प्रॉफिट अलग। अगर प्रॉफिट चाहिए, बिजनेस करना है, काम करना है, तो नैतिकता को जरा थोड़ा दूर रखो। तो लेकिन अब जबकि स्वयं आधिकारिक स्तर पर ऑफिशियल लेवल पर ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है कर्म योग द्वारा सशक्त भारत, तो ये किस प्रकार से हमारे आज के टॉपिक पर आधारित है। क्यों? क्योंकि अब ये जो भी तकनीकी चीजें यहां चल रही हैं, जिसको हम मशीन कहते हैं, मैकेनिकल टेक्निकल चीजें कहते हैं, तो वो सब मैकेनिकल टेक्निकल साधन जो भी हैं, वो भी तो चल रहे हैं, तो उसको भी हम एक्शन कहते हैं, कर्म कहते हैं, लेकिन वो मैकेनिकल एक्शन होते हैं, मशीन वाले एक्शन होते हैं, भाव शून्य होते हैं। ये जो सामने माइक पड़ा है, माइक ये तो नहीं सोच रहा मैं बहुत रिस्पेक्टफुली प्यार से भाई बहनों के लिए काम कर रहा हूँ, ये सोच रहा है, क्योंकि ये चेतन मूल्य नहीं है इसमें, सिर्फ ये स्थूल साधन है। तो ऐसे ही इंसान भी धीरे धीरे इस तकनीकी युग में साधनों के साथ रहते रहते क्या हो गया था, हम सबके कर्म भी मूल्य शून्य। अब 150 कितने करोड़ों के जो नागरिक हैं, क्या वो सब एक ही लॉ के नीचे, एक ही विधि विधान के नीचे चल सकते हैं? क्योंकि किसी की क्या कंडीशन, किसी की क्या कंडीशन, लेकिन वो लॉ सबके लिए एक है। कोई कैसा भी हो, वो पिस जाए, उसका जीवन में कुछ हो ही ना सके, तो इसको कहते भाव शून्य। इसलिए कहते थे कि कानून अंधा है, तो वास्तव में जब यहाँ पट्टी लगती है तो यहाँ भी तो चली जाती है, तो बहरा भी है। तो सिर्फ बोलता है, वर्डिक्ट देता है कि ये ऐसे बस ऐसे होगा, दैट्स ऑल। वो किसकी बात सुनो, उसको कितनी मुश्किल है, जीना ही संभव नहीं है। तो इसीलिए खाली कर्म राष्ट्र को महान नहीं बना सकते, हमारे जीवन को सुखी और शांत नहीं बना सकते, इसलिए कर्म योग की बात उठाई गई। और उसमें भी ब्रह्मा कुमारी को एक कलश मिला, तो अपने पूरे देश के अलग अलग स्टेट्स के निमित्त बने हुए भाई बहनों के ऊपर राष्ट्रपति महोदय जी ने अपने हाथ से स्वयं कलश रखा कि अब आपको ये जो है बीड़ा उठाना है। तो ये तो अच्छी बात है, राष्ट्रपति जी से पहले ही ये कलश हमारे ऊपर किसने रख दिया, और वहां तो 10-12 के ऊपर रखा, लेकिन यहां पर तो आप भले ऐसे करके बैठो एक सेकंड के लिए कि कर्म योग द्वारा, नहीं बोलना नहीं है, संकल्प करना है कि कर्म योग द्वारा हम तो फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। तो स्वर्ग में सिर्फ इंडिया तो नहीं होगा, पूरा विश्व होगा, तो स्वर्णिम भारत की रचना श्रेष्ठ कर्म से हो सकती है। कम से कम यहां तक तो पहुंच गए, अब उसका एग्जाम्पल बनने के लिए सबसे ज्यादा काम किस मूल्य पर करना पड़ेगा, कर्म योग की सैंपल बनने के लिए। अभी कर्म योग की कौन सी बात हो रही है, सिर्फ अपने यज्ञ की सेवा की बात नहीं हो रही है, यज्ञ सेवा में तो हम निपुण हो गए हैं, हम बाबा के घर में कोई भी काम करते हैं तो आंसुओं से कहते हैं, बाबा ये आपके किचन में सब्जी काट रहा हूँ, बाबा आपके घर में सफाई कर रहा हूँ, बाबा आपके घर में सिक्योरिटी कर रहा हूँ। तो यहाँ तो हमारा दिल अच्छी तरह से हड्डी सेवा करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन अभी साथ साथ बात हो रही है कि जो भी हम अपना जीवन यापन के लिए या घर चलाने के लिए, माताएं घर चलाने के लिए काम कर रही हैं, भाई लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो सब कर्म योग की कैटेगरी वाला व्यवहार हो तो उसके लिए बहुत ही आवश्यक मूल्य है, गुण है, भगवानुवाच है, संतोष धन, संतुष्टता का गुण। क्योंकि कर्म, मैंने थोड़ा लास्ट में सुना, प्रतिभा दीदी बता रही थी कि कैसे हर एक चीज में स्ट्रेस है, समाज में टेंशन है, तो वो क्यों है? क्योंकि कर्म जो है अभी वो कोई दिल से नहीं हो रहा है, मजबूरी से हो रहा है। कमाना है, करना है, कपड़े धोने हैं, बिजनेस चलाना है, दुनिया चलानी है, दिल से हम बहुत अच्छी लगन से ये काम कर नहीं पा रहे हैं दुनिया में, क्योंकि बहुत विघ्न है, लिमिट्स हैं, बंदिश है, ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हो, यहां नहीं बैठो यहां कर सकते हो, कितनी बंदिश होती। विदेश से भी आना होता है तो कितने नियम हैं। अब हमारा इतना सारा परिवार है, हमें मन करता है हम ये सारा इंदौर जोन आया ना, 10,000, 8,000, अब हम जा रहे हैं इंदौर जोन बैठा होगा तो हम इनके लिए 8,000 टोली ले जाएं, लेकिन वो क्या कहते हैं फ्लाइट वाले, क्या कहते सिर्फ 23 किलो, तो 23 किलो में तो अपनी ड्रेस आएगी सिर्फ, और तो कुछ आएगी नहीं, फिर बस थोड़ी सी चखाचुखी के लिए ले आएंगे। तो इन बंदिशों के कारण जितना भी कुछ हम कर रहे हैं वो खुश होके नहीं करते, चलाना है, चल रहा है, गाड़ी को खींच रहे हैं। तो अब हर हमारा काम प्रसन्न चित्त होकर के हो, अभी बैठे भी है ना, अब कैमरा तो देख रहा है लेकिन हम साक्षी होके, क्योंकि मेरी आंख कैमरा है, मैं साक्षी होकर के खुद को देखूं, क्या मैं आत्मा प्रसन्नचित हूं, प्रसन्नचित होके बैठे हूं कि मजबूरी से मुझे काम मिला है, असाइनमेंट मिली है, बैठ जाओ एक घंटा काटना है, वो महसूस हो रहा है मुझे कि मैं प्रसन्नचित हूं, किसी के लिए नहीं बैठे, अपने लिए बैठे हूं, वो फीलिंग है। तो जब मैं एक आत्मा, ये आत्मा, ये आत्मा, ये सब उस प्रसन्न चित अवस्था में, प्रेजेंट में बैठेंगे तो वो जो वातावरण बनेगा उसको कहा जाता है खुशनुमा वातावरण। और इस शिव जयंती का स्वयं भगवान ने हमको होमवर्क जो दिया है, झंडा लहराने की सौगात हमसे जो मांगी है कि बाबा को और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो अपने हर जन्मदिन पर हमसे किचड़ा मांगता है, कोई एक ऐसा दिखा दो जो कहे कि मेरे जन्मदिन पर आना और अपने घर का किचड़ा लेके आना, कोई एक दिखा दीजिए। आप अच्छे से अच्छा हीरा सोना चांदी भी ले जाएंगे ना, वो थोड़ा सा देखेंगे, हाँ ये तो है, ये होता तो और भी अच्छा होता। और लेकिन बाबा क्या देखते हैं, कितना ये कचरा, कितनी गंदगी ये मेरे पास लेके आए हैं, क्योंकि वो तो हमें पूरी तरह से साफ करने आए हैं। तो बाबा ने यही मांगा कि जो कुछ भी आपको संतुष्ट करता है, जो कुछ भी व्यर्थ है, उसको छोड़ करके वो सौगात बाबा को देके आपको ऐसा चेहरा रखना है जो बाप के नजदीक सबको ला सके। कौन याद आएगा खुशनुमा चेहरा देख के? कौन याद आएगा? ये कहां से है? ये लोग कहां से हैं? ये हैं कौन? ये अच्छा, ये क्या करते हैं? ये ऐसे कैसे हैं? कोई नीचे वाला तो याद नहीं आने वाला, ये चेहरा देख के ऊपर वाला ही याद आएगा। तो इसका मतलब एक दिन में तो होने नहीं वाला। ये जब से हमने ज्ञान सुना, हम सब संतुष्ट रह करके, खुश रह करके आगे बढ़ गए हैं, बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही बाबा कहते हैं हाथ खड़ा करो, जो सदा संतुष्ट रहते हैं, तो क्या हाल हो जाता है? हम संतुष्ट रह के चल रहे हैं, खुश रह के चल रहे हैं, लेकिन जब भी सदा की बात आती है, क्योंकि 90% भी होगा अगर 100 में से, तो पूरा तो नहीं होगा, फुल तो नहीं है। और लक्ष्य क्या है हमारा? कर्मयोगी, सशक्त, शक्तिवान और कर्मातीत, फुल। तो फुल के लिए क्या विघ्न है, प्रॉब्लम क्या है? हमें भगवान से ऊंची कोई चीज है क्या? तो क्यों हम इसमें सदा में संतुष्ट में अभी तक भी अपने को सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे हैं? तो थोड़ा सा हम अभी चेकिंग करते हैं, चिट चैट करते हैं, कौन है अंदर से? अभी बहुत सारे तो चले गए, लेकिन जो भी बैठे हैं जिन्होंने दिल से ये लक्ष्य बाबा से लिया है, बाबा मीठे बाबा मुझे संपूर्ण संतुष्ट, संपूर्ण खुश, पूरा संगम आपके साथ जीना है। किसने ये लक्ष्य पकड़ लिया है? पकड़ लिया है। और किसको अंदर में डाउट है? है तो लेकिन ये संभव नहीं है, कहाँ से संतुष्ट होंगे, ये तो हो ही नहीं रहा है। ऐसे भी हैं, छुपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बातें तो हजारों होती हैं। देखो कितने सारे हाथ खड़े हो रहे हैं। तो क्या हम अलग क्लास के स्टूडेंट हैं? क्या हमारे टीचर अलग हैं? हमारे टीचर, हमारी क्लास, हमारी मुरली, हमारा लक्ष्य, तो फिर हमारे लक्षण? तो कहीं पर तो हमने इस चीज को समय कम दिया है। जो बाबा कहते ही हैं संतुष्टता ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। ब्राह्मण ही तब लगता है जब संतुष्ट हो। व्हाइट साड़ी डाल ली, बैज लगा लिया, व्हाइट कुर्ता पजामा डाल लिया, लेकिन संतुष्ट नहीं है, ब्राह्मण लगेंगे?
आया है ब्रह्मा से तकरार विनाश खड़ा आगे सतयुग में अब तुम्हें आना है
धाम में तुम्हें
सतयुग में अब तुम्हें आना है
धाम में तुम्हें आना है।
तो कभी कभी ये देखने में आता है कि संतुष्टता के विषय में कनेक्शन में हमारी कुछ अवधारणाएं हैं, गलत फहमियां हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि ये समझ लेते हैं कि संतुष्ट रहना माना तो योगी लोग हैं ना, आध्यात्मिक है ना, तो इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे जीना है जैसे खाना है, जो मिलता है मिलता है, नहीं मिलता है नहीं मिलता। तो संतुष्ट रहना माना महत्वाकांक्षी नहीं होना, अर्थात प्रगति के लिए प्रोग्रेसिव नहीं होना, उन्नति के लिए नहीं सोचना, जैसे है मैं संतुष्ट। तो इसका मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हुई कि हम कंफर्ट जोन को, एक कंफर्ट जोन बना लेना, उसको हम संतुष्टता से मिक्स कर देते हैं। लेकिन ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर, राजयोग के आधार पर संतुष्टता किसी भी प्रकार के कंफर्ट जोन को तोड़ना है। ऐसा नहीं जो है सो ठीक है, जो है वो क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन हम इससे हार नहीं रहे हैं, हम इसको ठीक करने के लिए प्रगतिशील हैं। मुझे लक्ष्य है, मुझे ये करना है आज, ठीक है अभी मैं 60 की हो गई ना, तो 60 तो लगी लात, टांग नहीं चलती तो ना से बाबा मेरा है, बाबा के साथ हूं मैं, तो दूसरा कोई व्यक्ति होगा दुनिया में वो कैसे भी करके अपने को ठीक करेगा, तो वो कहेगा ये तो योगी लोग हैं आध्यात्मिक हैं, इनको कोई परवाह नहीं शरीर की। फिर हम क्या समझते हैं, हमारा शरीर से कोई मोह नहीं, हमें कोई इच्छा नहीं है, तो उसको देख के फिर दूसरे लोग डर जाते हैं कि ये ऐसी संतुष्टता तो हम नहीं धारण कर सकते, हमें तो दर्द भी होता है दुख भी होता है। तो पहली मिसअंडरस्टैंडिंग कि चेक करो कहीं मैं किसी कंफर्ट जोन में बैठ करके तो संतुष्ट अपने को नहीं समझ रही हूं, अर्थात जो चीज मुझे ठीक करनी है परिवर्तन करनी है उसको मैंने स्वीकार करके फुल स्टॉप लगा दिया है। वो संतुष्टता नहीं है, वो निष्क्रियता है, पैसिवनेस है, कंफर्ट लविंग है, आराम पसंद है, लेजीनेस है, और ये दोनों नजदीक हैं। संतुष्टता कभी कभी वो लेजीनेस की तरह दिखाई दे सकती, लेजीनेस संतुष्टता की तरह दिखाई दे सकती। बड़ा आराम पसंद होता है ना, कोई कहे ठीक है जैसे चल रहा है चलने दो, कौन करेगा मेहनत इसको, ठीक है मैं तो संतुष्ट हूं, तू भी संतुष्ट रहे। तो ये संतुष्टता नहीं है। तो संतुष्टता माना हाँ दिखाई पड़ रहा है कि ये ऐसी चीज है, तो इसको कहते हैं क्लैरिटी, क्लियर है, इसलिए मैं बेचैन नहीं हूं, अशांत नहीं हूं। मुझे मालूम पड़ रहा है मेरे शरीर के साथ ये है, दुनिया के साथ ये है, या जो भी काम ऐसा हो रहा है, लेकिन उसके बाद में है बिंदु 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 बिंदु, अर्थात मुझे इसको ठीक करना है। अभी मैं देख रही हूं संतुष्ट, मैं समझ में आ रहा है मुझे, मैं झगड़ा नहीं कर रही, स्ट्रगल नहीं कर रही, लेकिन मैंने हार भी नहीं मानी। तो संघर्ष अनुपस्थित हो मुझ आत्मा में, संघर्ष नहीं है, संतुष्टता है, क्लैरिटी है, मुझे समझ में आ गया है गड़बड़ कहाँ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो है जैसा है ठीक है। यहां तक किसको समझ में आ रहा है, मेरी भाषा समझ रहे हैं, मैं रशियन नहीं बोल रही, हिंदी बोल रही। तो पहली बात क्या हुई अभी, ठीक है, पहली बात कि मुझे संतुष्टता को कंप्रोमाइज आलस के साथ मिक्स नहीं करना है, आलस और एक समझौता कर लेना, ठीक है चलो तुम ये करो हम ये करते हैं, नहीं जो ठीक है वही आखिर करके होना चाहिए, लेकिन उसके लिए हम शांत मन से शक्तिशाली रीति से आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि संघर्ष में हमारी शक्ति खत्म हो जाती है, हम सिद्ध करना चाहते हैं ये ठीक नहीं है, सिद्ध में समय चला जाएगा। तो संतुष्टता माना समझना, क्लैरिटी, दिखाई पड़ रहा है। बाबा जब आते हैं तो उस समय जो कुछ भी होता है बाबा के सामने सब ठीक होता है, कुछ भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमने कहाँ किया अपना काम, होमवर्क किया क्या, थोड़ा थोड़ा करते हैं। कोई को बीमारी है, कोई को अच्छी सीट नहीं मिली, कोई के मन में क्या हो रहा है, कोई की चप्पल गायब हो गई है, किसी को रहने के लिए स्थान नहीं मिला हुआ है, क्या क्या नहीं हो रहा होता है, किसी की फिर जाने की टिकट बुकिंग नहीं हुई है, और कोई अपने मन में कितनी सारी गलत भावनाएं लेकर के बैठा है। लेकिन बाबा जब आते हैं तो बाबा का जो स्वरूप है वो असंतुष्ट मूर्ति होता है या संतुष्ट मूर्ति होता है, तो क्या कहेंगे कि भगवान भी कुछ नहीं कर रहा है आजकल, पता है बहन जी आपको, भगवान भी आजकल देखते हुए भी नहीं देख रहा है, ऐसे है ना बोलने वाले कई कई, ये जो बड़े हैं ना वो तो देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं, उनको किसी चीज से मतलब नहीं है, ये हमको तो सब दिखाई दे रहा है खराब, वो तो कुछ करते भी नहीं है। वो हम क्यों ऐसा समझ लेते हैं, भगवान के लिए भी, बड़ों के लिए भी, निमित्त बने के लिए भी, क्योंकि हमने ये गलत फहमी पाल रखी है, हम समझते हैं संतुष्ट अर्थात संघर्ष नहीं है, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देना है, रिएक्शन करना है, सिद्ध करना है। लेकिन संतुष्ट माना पुरुषार्थ नहीं छोड़ा है, समझ लिया चित्र से सिचुएशन को, पकड़ में आ गई सिचुएशन, अब हम काम करेंगे। हर बार बाबा आता है, हर बार सेंस करता है कहां तक मेरे ये बच्चे पहुंचे हैं। अगर एक घंटा बाबा मुरली में लगा दे इसमें कि आपने ये नहीं किया, आप ये कर सकते थे, आपने तो एक घंटे में वो ज्ञान प्रेम सुख शांति आनंद नहीं देगा, सिर्फ डिस्कस और सिद्ध करेगा संघर्ष। एक बार भी किया बाबा ने, 90 साल हो गए, तो 90 साल की पहले मुबारक तो दो बाबा को। तो 90 ईयर की पढ़ाई में स्वयं ज्ञान के सागर ने, कर्मातीत बनाने वाले बाबा ने हमको ये दिखाया संतुष्ट स्वरूप क्या होता है, और यहां तक हमको ले आए। तो क्या हम अपनी छोटी सी गृहस्थी नहीं चला सकते संतुष्ट रह के? हम अपने 2 बच्चों को, हम अपने परिवार को आगे नहीं ले जा सकते संतुष्ट रह के? सिर्फ इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना है। दूसरी बात, हमको डर क्यों लगता है संतुष्टता से? क्योंकि अंदर में इनसिक्योरिटी बैठी हुई है, भय बैठा हुआ है। बाहर से नहीं दिखता वो भय, अंदर से भय है, ये मैं पीछे रह जाऊंगी, ये आगे चले जाएंगे। अगर मैं संतुष्ट होकर बैठ गई ना, मैं कुछ बोलूंगी नहीं कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी करना है, तो ये सब आगे चले जाएंगे और मैं पीछे रह जाऊंगी। नहीं, मैं अगर ये भी मुझे मिल जाए, ये भी मुझे मिल जाए, हर एक चीज मुझे मिल जाए, उसके बारे में मैं सोचती रही, तो ये असंतुष्टता मुझे आज जो मिला हुआ है उसको कर्म में लगाने नहीं देगी। आज मुझे ये एक तो चेयर तो मिली, अब मैं कहूँ चेयर मतलब सोफा मिल जाता ना, तो तुमको इतनी ही तो जगह चाहिए, इस पे बैठ के तो कुछ कर लो। तो इनसिक्योरिटी है, और मिल जाए तो ठीक हो जाएगा, ये मिला हुआ है इसका क्या करोगे? तो इनसिक्योरिटी का कनेक्शन फिर किससे है? दूसरी प्रॉब्लम कौन सी है? कंपैरिजन, तुलना करते हैं। क्यों मुझे अपनी ये सीट छोटी लग रही है? क्योंकि देखो ये राजा की तरह सोफे पे बैठे हैं, देखो अपना ऐसे सोफे पे आराम से बैठ, और मुझे तो ये सीट मिले तो सोफा मिलता था। समाचार सुनते हैं हम दूसरों के घरों घर देखते हैं, उनके साइज देखते हैं, दूसरों की पॉकेट इनकम देखते हैं, उनके कार्ड देखते हैं, बैंक कार्ड 1 2 3 4 5 6, और उनकी कारें देखते हैं, उनकी उपलब्धियां देखते हैं, तो फिर असंतुष्ट हो जाते हैं। वैसे सब ठीक था, तो इसलिए हमको हेजिटेशन होती है ये संतुष्टता के गुण को अपनाने में, क्योंकि हमको लगता है ये तो अभी तक तो मेरे पास ये है ही नहीं, और ऐसे थोड़ी मैं बैठ जाऊंगी। तो इंस्पायर होना दूसरों की उपलब्धियों को देख करके, ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। लेकिन तुलना करके अपने को बहुत छोटा कर देना जो चल भी ना पाए, अपना जो काम करना है वो भी ना कर पाए, उसको कहेंगे असंतुष्ट आत्मा। बाबा ने तो खुद ही सिखाया है, जो दूसरे काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उसको देखो, न्यूज पढ़ो, आपको भी उमंग आए, हमें भी ये करना है। लेकिन ज्यादातर भाई बहनें वो सुन के दूसरों का देख करके ठंडे पड़ जाते हैं, हाय मैं तो कुछ भी नहीं हूं, और फिर इधर उधर बैठते हैं। हमको ना एक प्रश्न है, क्या प्रश्न है, सब कुछ इतना कुछ करे, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा, मैं तो कुछ करता भी नहीं, मैं तो बिल्कुल भी योग्य नहीं हूं। अरे भाई तुमको किसने कह दिया, तुम योग्य किसने कह दिया, यू आर हैंड पिक बाय गॉड, भगवान ने तुमको अपने हाथ से चुन के अपने घर में लाया है, अयोग्य कहां से हो गए, तो कहां से बीमारी आ गई, क्यों, क्योंकि उधर देखा इधर छोड़ के। और श्रीमत क्या थी, स्वमान में रह के सम्मान दो। तो दूसरों की अचीवमेंट, दूसरों की उपलब्धियों को सुनना, अप्रिशिएट करना, ये रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड है। लेकिन स्वमान की सीट को छोड़ के तो फिर हम अपने को ही डिप्रेशन में, अवसाद में ले जाते हैं कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं। हम कहते फिरेंगे मैं क्या चीज हूं, आप तो सब कुछ हो, क्या भगवान ने इजाजत दी है ऐसा बोलने की कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, भगवान मेरी महिमा कर रहा है और मैं ये कहता फिर रहा हूं, तो क्यों। ये जो बच्चे लोग हैं ना, माताएं उनको वहां पर बाहर भेज सकते हैं, नहीं तो उनको इधर स्टेज पे बुला के डांस कराते हैं, जो है सो है, कम हियर, कम आ जाओ, देखो आना भी नहीं है। तो ये दूसरा कारण, पहला कारण क्या था, इनसिक्योरिटी, अंदर का भय कि सब कुछ है नहीं मेरे पास अभी ना, और भी मिल जाए। फिर कंपैरिजन, और तीसरी जो बात हमको परेशान करती है, संतुष्टता से दूर ले जाती है, वो देखा है मेजॉरिटी, थोड़ा कुछ हुआ नहीं, थोड़ी सिचुएशन आई नहीं, कोई ने ऐसा हमारे से व्यवहार कर दिया, बस ओ, मैं तो बदल नहीं पा रहा, मेरा तो गया, मैं तो अब कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, हार मान लेते हैं। तो कहते हैं हम ठीक हैं, हम जैसे हैं ठीक हैं, लेकिन ठीक नहीं है। वो लोगों से तंग आकर के बैठे हुए हैं एक कोने में, तो ऐसे ठीक वाले ठाकुर बाबा उनको संतुष्टता का सर्टिफिकेट दे सकता है। तो जब तक भगवान पढ़ा रहा है, मैंने कैसे अपने को बिठा दिया, जब तक भगवान पढ़ा रहा है तब तक मुझे पुरुषार्थ करना है, या फिर धन की कमी है, धन भी ऊपर नीचे है, घर में सब लोग समझते भी नहीं है जो हम करना चाहते हैं, उससे भी थक गए, उससे भी हार गए, बस हमने बहन जी ड्रामा परफेक्ट है। अरे क्या परफेक्ट है, तुम अकेले स्वर्ग में जाओगे क्या, और क्या बनोगे, शरीर को तो चला नहीं रहे हो, और कुछ और कार्य ऐसा अपने ऊपर लिया नहीं हुआ है, तो क्या करने वाले हो स्वर्ग में जाके? वहां जाके काम करना है क्या? यहां मेहनत करो, वहां आराम करेंगे। तो वो क्यों हो जाता है? क्योंकि हम हार मान लेते थोड़ा सा। अगर एक एक पूर्वज की कहानियां सुने, एक एक पूर्वज की, सब आते हैं तो मधुबन में सब म्यूजियम देखते हैं ना, पूर्वजों के चित्र लिखे लगे हैं उधर मीटिंग हॉल के अंदर, सब ये चित्र। जीवन भर परिस्थितियां, जीवन भर कठिनाइयां, शुरू से अंत तक, लेकिन कभी भी किसी ने हार नहीं मानी। और ऐसे करके नहीं बैठ के, ड्रामा है ना, तो ड्रामा, दुनिया के लोग जो हैं भगवान को जानेंगे ही नहीं, ये तो ड्रामा है, सब बदनाम कर रहे हैं ब्रह्मा कुमारी को, योग लगाओ। वो योग लगाना, योग लगाना नहीं होता, योग ही सब कुछ है, संपूर्ण विजय योग से होगी। लेकिन जहां पर जो काम करना है उसको ना करके छोड़ के हम तो योग लगाएंगे भाई, वो योग लगाना, वो सफल नहीं कहा जाएगा। तो इसीलिए कितनी भी परिस्थिति हो, हाँ मुझे समझ में आ रहा है ये है, लेकिन हमें इसको खत्म करके और अपने को ऊंचा करके, असंतुष्ट नहीं है हम, कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं इसने पैदा की या इसने पैदा की, उसमें ऊर्जा नहीं लगा रहे। तो संतुष्टता अर्थात परिस्थितियों में निष्क्रियता नहीं है, स्वीकार करना माना ड्रामा, तो स्वीकार करना ये जरूरी है, लेकिन और अधिक ऊर्जा से, और अधिक शक्ति से, और अधिक उमंग से उसको ठीक करने में लग जाना है। ड्रामा करके बैठ नहीं जाना। हाँ भाई, अच्छा आप हेलो मधुबन में आए, अच्छा अकेले ज्ञान में चलते हैं, हाँ ड्रामा है ना बहन जी, सबका अपना अपना पार्ट है। अच्छा तुम्हारा भी तो था, भगवान ने तुम्हारा तो खोला, किसी ने तो आप पे मेहनत की, आपने किस पे मेहनत की? आपको ज्ञान में चलाने में किसी ने अमृत वेले आपके लिए योग किया होगा, आपको दृष्टि दी होगी बाबा के सामने बिठा के, मेहनत की, समझाए, आपने इतना परसेंट भी किसी के ऊपर की तो जरूर चलेगा, वेस्ट तो नहीं जाएगा। लेकिन हम थोड़ा सा करके ड्रामा करते थे। तो ऐसी वाली संतुष्टता को देख के फिर लोग डरते हैं, कहते हैं हम स्पिरिचुअल लाइफ ऐसे नहीं जीते, हम तो दुनिया में कुछ करना चाहते हैं, तो हम निठल्ले हैं क्या? अरे हम तो करना चाहते हैं, हमको तो बहुत बड़ा कलेश मिला हुआ है, लेकिन इस रूप की संतुष्टता से हम वो अपनी जिम्मेवारी को निभा नहीं पाएंगे। फिर और हमें क्या उसमें चैलेंज आ जाता है, हम क्यों हिचकिचाते हैं संतुष्टता में? ये जो आवाज है अंदर से अहंकार की, अहंकार की, अगर और मिल जाए बस, और सब कुछ मिल जाए, मेरा अभी इतना है ना, तो अहंकार वो संतुष्ट नहीं होता। इतनी सीट मिली, अभी और मिल जाए, अभी मेरा थोड़ा और आगे नाम चला जाए। अहंकार प्राप्ति के साथ बड़ा होता चला जाता है। तो हम संतुष्टता का मतलब क्या, अपने उस स्वमान को, गौरव को खत्म कर देना है? हम ऊंचा उठने की इच्छा नहीं रखनी है क्या? क्या सप्रेस करना है उसको, इच्छा को? अहंकार कहता है और चाहिए, लेकिन संतुष्टता क्या कहती है? संतुष्टता क्या कहती है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा बाबा ने ऐसे संतुष्टता सिखाई? क्या कहा है? प्रजायोगी बनो, प्रजा बनो, राजा बनो। और राजा भी कौन सा बनो? विश्व महाराजन बनो। तो क्या बाबा हमारा अहंकार जगाता है? अहंकार कहता है और चाहिए, लेकिन यहां संतुष्ट मणियां क्या कहती हैं? संतुष्ट मणियों का गीत कौन सा है? तो कभी कभी ये दोनों एक जैसा म्यूजिक लगता है, तो लोग हमको कहते हैं ये तो क्या समझते हैं अपने को, ये दुनिया बदलने चले हैं, इनको तो ये भी, ये तो ये सब नहीं। संतुष्टता का गीत है, जो मिला परमात्मा ने, जो मुझे दिया उसका शुक्रिया। आपने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन अब इसके साथ मुझे कर्म योग अर्थात श्रेष्ठ कर्म करते हुए अपने इस संपूर्णता के लक्ष्य तक पहुंचना है। तो संपूर्णता की स्थिति से कर्म करना, इसको कहते हैं कर्म योग, संतुष्टता। क्योंकि लोग समझते हैं इनको तो कुछ नहीं चाहिए, ये तो संपूर्ण हो गए। नहीं, संपूर्णता की स्थिति में रह के भी उमंग उत्साह से हम कर्म अर्थात प्रोग्रेस अर्थात नवीनता कर सकते हैं। नहीं, अब देखो, कहते हैं, गीता कहती है, आप लोगों का राजयोग कहता है इच्छाएं मत रखो। अब इच्छा नहीं रखेंगे तो उमंग कैसे आएगा कुछ करने का? तो इसलिए हम मोटिवेशन दिलाने के लिए हमने ये गिफ्ट रखा है, हमने वो रखा है। क्यों? क्योंकि गीता का ज्ञान है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले, तो ये तो संभव ही नहीं। अगर फल की इच्छा नहीं रखोगे तो बीज बोओगे क्या? बीज बोने वाले को फल का ख्याल होता है, तो फल की इच्छा कैसे न रखो? फिर तो आप पानी देने भी नहीं आओगे। पानी देने भी तब आओगे जब आपको वो आम दिखाई दे रहा होगा कि ये आम आएगा तो हम खाएंगे, हम अमीर हो जाएंगे। लेकिन भगवान ने क्या सिखाया? इच्छा और आवश्यकता में एक लाइन है, दोनों के बीच में बीज बोने की आवश्यकता है, क्योंकि उससे जो फल निकलेगा उसकी शरीर को आवश्यकता है, समाज को आवश्यकता है। तो उस आवश्यकता को इच्छा में बदलने में देर नहीं लगती। उसको समझना, उसको कंट्रोल करना, ये है संतुष्टता। लेकिन उसमें भी प्रोग्रेस समाई है, गति समाई है। क्योंकि गति का मतलब ये नहीं है भागते रहो, ये करो वो करो ये करो। तो कभी कभी हमारा 80% काम एक एमलेस भटकना होता है, जिसको कहते हैं बिना दिशा की भाग दौड़। शरीर भी खराब कर लेते, योग भी नहीं लगा पाते, आराम भी नहीं कर पाते, संख्या में चले जाते, क्वालिटी खत्म हो जाती है। समझ रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं ये कर रहे हैं, हम ये करेंगे, कर क्या रहे हो? इनके पास लोग ज्यादा हैं तो ये ऐसा कार्यक्रम कर सकते हैं, यहाँ लोग कम हैं, थोड़ा धन ज्यादा है तो आप ऐसा नहीं, क्योंकि ये कर रहे हैं, ये हमें भी करना है। ये है इच्छा, दिशाहीन इच्छा। तो संतुष्टता का मतलब गति का रुकना नहीं, प्रगति का रुकना नहीं, लेकिन शांति से कर्म करते हुए जड़ को मजबूत करना, अंदर जाना। तो जितनी जड़ मजबूत होगी उतनी उड़ान भरेगी संस्था, हमारा जीवन, हमारा कार्य। इन्होंने ये किया, हम भी ये करें, उधर भाग पड़े। अरे ये तो कर लेते पहले। एक एक आत्मा पवित्र बने, इस पवित्रता की जड़ को तो पहले मजबूत करो अपने में, एकदम पवित्र बन जाओ, इस पे तो मेहनत करो। लेकिन उस पे मेहनत करने की बजाय हम कोशिश करते हैं ये इस सेवा में फेमस हो जाए, हमारा मधुबन में सरेंडर हो जाए, या हम ये दिखा दें मधुबन में, ये कर दें वो कर दें, अपने स्टेट में ये कर दें। पवित्रता की जड़ें मजबूत करेंगे तो ऐसे रॉकेट चढ़ेगा ऊपर बिना किसी प्रॉब्लम के। तो फाउंडेशन जितनी स्ट्रांग होगी तो उतना प्रगति होगी, और फाउंडेशन स्ट्रांग होने के लिए हमें शांत, प्रसन्न अर्थात संतुष्ट, कंपैरिजन नहीं, भागदौड़, दिशाहीन नहीं, डर नहीं, सप्रेशन नहीं, तो सफलता है। तो विषय तो बहुत गहरा है, अब ये मिशन शुरू हुआ है, कर्मयोग द्वारा सशक्तिकरण बिना संतुष्टता के नहीं होगा। तो रोज मनन करें इस पर, रोज चेक करें कि मुझे अपने भारत को, अपने देश को, विश्व को शक्तिशाली बनाने के लिए खुद की संतुष्टता को संपूर्ण बनाना है। यथार्थ संतुष्ट आत्मा अर्थात प्रसन्नचित, नो ब्लेमिंग, उमंग उत्साह से भरपूर, ऊर्जा से भरपूर और निष्काम, निर्भयता। तो ऐसी संतुष्ट आत्माओं को फिर बाबा कहेंगे बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।